हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। प्रीति, घर आ जाओ बेटा, यहाँ हम तुम्हारा और होने वाले बच्चों का ध्यान रख लेंगे। इसकी जरूरत नहीं माँ, ये कोई पहली बार नहीं जब मैं प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ हूँ। पहले भी जब मैं माँ बनने वाली थी तो यहीं थी और मेरे पति ने ही मेरी देखभाल की थी। जब तब आपको मुझसे और मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं था, तो अब भी आपको मेरे और मेरे होने वाले बच्चों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जैसे तब मेरे पति ने सब संभाला था और मेरी और बच्चे की देखभाल में कहीं कोई कमी नहीं रखी थी, वैसे ही इस बार भी मेरे पति मेरा और हमारे बच्चों का ध्यान रख लेंगे। प्रीति ने एक बार फिर रूखे स्वर में जवाब दिया और जाने से साफ इनकार कर दिया। वो लाख कोशिश करती थी, पर बीती बातें, वो दर्द जो उसके अपनों ने उसे दिया, उसे भुलाना उसके लिए नामुमकिन था। मन में दर्द अब शब्दों में कड़वाहट बनकर घुलने लगा था। प्रीति ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर शकुंतला जी की बात सुनकर प्रीति को ना चाहते हुए भी वो वक्त याद आ गया था जब इसी माँ ने उसके प्रेगनेंसी की बात पता चलने पर पहले उसे अबॉर्शन के लिए कहा था और बाद में उसे उस घर से जाने को कह दिया गया था। उस दौरान जब बेटियों को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब शकुंतला जी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने कभी झूठे मुंह भी उसे अपने पास रहने को नहीं कहा था। तब उन्हें उसके बच्चे से कोई लगाव नहीं था, उसकी रत्ती भर फिक्र नहीं थी, और आज जब वो चिंता दिखा रही थी तो प्रीति को सब दिखावा लग रहा था। सही कहते हैं लोग, वक्त रहते जरूरत पर जब हमें कुछ नहीं मिलता और बाद में बिन मांगे वो चीज़ हमें दी जाती है, तो हमें उसकी ना तो चाहत रहती है और ना ही जरूरत। उस चीज़ से हमारा मन उठ चुका होता है, तब वो चीज़ हमें सुकून नहीं, चुभन और दर्द देती है, और प्रीति का वही दर्द उसके व्यवहार में रूखापन बनकर झलकने लगा था। जब जब वो वहाँ गई, उसे दर्द और उनकी कड़वी जहर भरी बातें ही सुनने को मिली थीं। अब वो अपनी इस खुशी पर किसी तरह के दुख की परछाई नहीं पड़ने देना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से सब संवारा था उसने, अब फिर किसी की जहर भरी बातों में आकर सब बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इन सब से दूर रहना चाहती थी, इसीलिए उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। और उसका जवाब ऐसा था कि शकुंतला जी चाहकर भी कुछ कह ना सकी। फोन की दूसरी तरफ शकुंतला जी के साथ माधुरी भी मौजूद थी। सब बातें सुनी थी उसने, पर शकुंतला जी के चुप होने पर एकदम अनजान बनते हुए मुस्कुराकर बोली, हेलो प्रीति, कैसी हो?
मैं ठीक हूँ।
तुम तो कभी याद ही नहीं करती, लगता है अपनी घर गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो।
जी, छोटा बेटा है तो उससे वक्त ही नहीं मिलता। प्रीति जितना हो सके उतना सॉफ्टली बात कर रही थी उनसे, क्योंकि बेवजह की नफरत या बहस नहीं चाहती थी वो।
प्रीति का जवाब सुनकर माधुरी ने मुस्कुराकर अगला सवाल किया, प्रीति घर कब आ रही हो तुम?
कौन से घर?
प्रीति ने सवाल के बदले उल्टा उसी से सवाल कर लिया।
इस घर, अपने मायके।
आप मुझे वहां क्यों बुलाना चाहती हैं? प्रीति ने सपाट लहजे में सवाल किया, जिसे सुनकर माधुरी ने मुंह से शहद टपकाते हुए फिक्रमंद होते हुए कहा, ऐसे वक्त पर लड़की को मायके में रहना चाहिए, वहां अच्छी देखभाल हो जाती है।
ये बात मेरी पहली प्रेगनेंसी के वक्त तो आपको याद नहीं आई? प्रीति ने तंज कसते हुए कहा।
उसकी बात सुनकर माधुरी खिसियाते हुए बोली, क्या प्रीति, तुम भी कौन सी पुरानी बात लेकर बैठ गई? तब हालात ही खराब थे, पर अब तो सब ठीक है, तो तुम यहां आ सकती हो।
साफ साफ बताइए ना भाभी कि क्यों मुझे बुलाना चाहती हैं आप, क्या मतलब है आपका इसके पीछे?
प्रीति को माधुरी की चिकनी चुपड़ी बातें और अचानक उसे यूं प्यार उंडेलते उसके इरादों पर शक हो गया था, इसीलिए उसने साफ शब्दों में ही सवाल कर लिया। माधुरी ने अब भी झूठा प्यार बरसाते हुए जवाब दिया,
मतलब कुछ नहीं प्रीति, तुम्हारा पहले से एक बेटा है और मैंने सुना कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तो तुम्हारे और जमाई जी के लिए तीन तीन बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाएगी। इस जमाने में एक बच्चे को ही अच्छा भविष्य देना बहुत मुश्किल होता है, तीन तीन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका खर्चा उठाना दामाद जी के लिए बहुत मुश्किल होगा, तो मैं सोच रही थी कि एक बच्चा अगर तुम।
प्रीति बड़े ही ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। जैसे ही माधुरी आखिरी की बात पर पहुंची, प्रीति के चेहरे के भाव बदल गए। माधुरी अभी आगे बोल ही रही थी कि प्रीति ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी और एकाएक उसकी बात काटते हुए बोली, कुछ सोचने की जरूरत नहीं आपको भाभी, क्योंकि जो आप चाहती हैं वो मैं कभी नहीं करूंगी, तीन हो चाहे एक, मेरे बच्चे हैं वो, जिनमें से एक को भी मैं खुद से दूर नहीं करूंगी। प्रीति ने इतना कहा और उसकी नज़र दरवाजे से आते आयुष्मान पर पड़ी। प्रीति ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया, वो आयुष्मान के सामने ये सब बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने झट से फ़ोन काट दिया। अर्श कार्टून देखते देखते सो गया था, तो आयुष्मान उसे ही अंदर सुलाने लेकर आया था। अंदर आते हुए आयुष्मान की नज़र प्रीति पर पड़ चुकी थी। प्रीति जब तक खुद को नॉर्मल कर सकी, आयुष्मान उसके चेहरे के बिगड़े भावों को देख चुका था। अगले ही पल उसने प्रीति से सवाल भी कर लिया, किससे बात कर रही थी और इतने गुस्से में क्यों लग रही हो तुम? आयुष्मान का सवाल सुनकर प्रीति ने फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए जवाब दिया, घर पर बात कर रही थी और गुस्सा नहीं थी, बस मुझे और बात करनी थी, पर उन्होंने फोन काट दिया, इसीलिए मेरा मूड खराब हो गया था। आयुष्मान गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। प्रीति ने घबराहट में अपने होठों को दांतों तले दबाया, फिर अर्श को देखकर बात बदलते हुए बोली, सो गया?
आयुष्मान सब समझ गया कि प्रीति टॉपिक बदल रही है, उसका ध्यान भटका रही है। पर प्रीति जब इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी तो उसने भी ज्यादा सवाल करके उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा और हामी भरते हुए मुस्कुराकर बोला, कार्टून देखते देखते ही सो गया। आयुष्मान ने आगे बढ़कर अर्श को बेड पर लिटा दिया, फिर प्रीति के सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। प्रीति असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। प्रीति, एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ, पूछिए ना, प्रीति ने तुरंत कहा और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। आयुष्मान कुछ पल खामोशी से उसके परेशान चेहरे को देखता रहा, फिर उसने गंभीरता से सवाल किया, प्रीति, क्या अब भी तुम्हारे मन के किसी कोने में ये शक है कि हमारा अपना बच्चा होने के बाद अर्श के लिए मेरा प्यार और लगाव कम हो जाएगा, या मैं उसमें और हमारे बाकी दोनों बच्चों में फर्क करूंगा? आयुष्मान का सवाल सुनकर पहले तो प्रीति शौक से उसको देखती रही, फिर तुरंत ही एतराज जताते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ आपको, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैंने तो इतने दिनों में एक बार भी ये बात नहीं सोची, फिर आपके दिमाग में ये सब कहाँ से आ गया? कहीं से भी नहीं, बस मैंने सोचा कि कहीं अब भी तुम्हारे मन में ये बात तो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले भाभी और माँ की बातों में आकर मैंने आप पर और आपके प्यार पर शक किया था, पर मैं वही गलती दोबारा गलती से भी नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है आप पर, खुद से भी ज्यादा। मैं जानती हूँ कि आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। गुड, आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। आयुष्मान प्रीति के जवाब से संतुष्ट नजर आ रहा था। उसके अधरों पर सौम्य सी मुस्कान फैल गई थी। प्रीति भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। आयुष्मान ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर को चूम लिया।